हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आज हमारे साथ रूबरू होने जा रहे पूर्व जनपद सदस्य संदीप जी भकने। नमस्कार भकने जी।
नमस्कार बहादुर जी।
भकने जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, वर्ष 2022 का अभी विदाई का अवसर है, तो आपको वर्ष 2022 कैसा रहा, इसमें आपने क्या खोया और क्या पाया?
2022 के पहले 21 में और 22 आते आते जिस तरह से हम लोग सब कोरोना से पीड़ित रहे, हम सब लोगों के लिए ये वर्ष 2022 बड़ा बड़ा सुख दुख भरा था। पर हम लोग कोरोना से उभरे, पर फिर आने वाले समय में अभी खबरें सुनने को मिल रही है कि कोरोना और कोरोना का भय दिखाया जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये भय दिखाना जरूरी है। जनता का उत्साह वर्धन या जनता को अवेयरनेस करने की जरूरत है, भय दिखाने की जरूरत नहीं है। 2022 हम सब लोगों के लिए सुख दुख भरा तो रहा है, साथ में किसान भी बहुत परेशान रहे। इस वर्ष अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण किसानों के फसलों को भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई शासन ने, सरकार ने करनी चाहिए, किंतु इनकी नुकसान की भरपाई भी नहीं होते नजर आ रही। जहां फसल कम है और फसल कम होने के साथ साथ मालों के जो भाव है, भाव भी बहुत कम है, इसलिए किसान एक त्रस्त है।
भकने जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में, जैसा कि आपने कहा कि अतिवृष्टि बाढ़ के चपेट में तो किसान आया ही, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि कपास के दिनों दिन भाव गिर रहे, इस संबंध में आपका क्या कहना है?
कपास के भाव क्यों गिर रहे हैं, इसका कारण तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कपास इस साल उत्पादन कम है, पर ये जो कालाबाजारी, ये जो एक व्यापारी और व्यापारियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होना, ये किसानों के भाव को कम करना करने की ओर इंगित करता है। यदि सरकार का व्यापारियों पे यदि नियंत्रण रहे तो किसानों को निश्चित रूप से भाव मिलेगा, पर जब किसानों की फसल खेत से निकलती है तब व्यापारी की एकता कर लेते हैं और उनके मूल्य को स्थिर रखते हैं, और स्थिर रखने के कारण सारे व्यापारी एक ही रेट में माल खरीदते हैं, ताकि किसान एक मजबूर रहता है। किसान ज्यादा दिन तक अपने माल को स्टोर करके नहीं रख सकता, अपने उत्पादन को ज्यादा दिन तक रोक के नहीं रख सकता, ये व्यापारी इस देश का जानता है, और इसलिए व्यापारी इस बात का फायदा उठा के किसानों के भाव को स्थिर रखता है, ताकि किसानों को कम भाव में माल को बेचना पड़े और व्यापारी का भला हो जाए।
भकने जी, क्या आपको नहीं लगता कि शासन ने कपास का जो समर्थन मूल्य रखा है वो कम है?
ये आप लोगों ने देखा होगा, विगत 2021 में जिस तरह से किसानों ने दिल्ली में और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे जो आंदोलन किया गया था, वो इसीलिए था कि जिस रेशो में किसान के उत्पादन का जो लागत है उस रेशो में MSP रखा जाए। MSP मिनिमम न्यूनतम मूल्य जो है वो जो शासन ने निर्धारित किया हुआ वो कई वर्षों का है। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, कर्मचारियों के, अधिकारियों के जैसे वेतन बढ़े हैं, उसी रेशो में, महंगाई के रेशो में किसान के फसलों का दाम आज भी नहीं बढ़ा है। खाद, बीज, इसके कई गुना भाव बढ़ गए, पर किसानों के फसलों के दाम वही के वही है। हर साल किसान केवल MSP पे 200 रुपया, 300 रुपया बढ़ाया जाता है, जबकि जो यूरिया की, DAP की जो बोरी हमको पहले 400, 450, 500 में मिलती थी, आज वो 1500 और 1700 रुपए में मिलती है। यूरिया डबल और ट्रिपल भाव में हमको मिलता है। बीजों के भाव इतने बढ़ गए हैं, जो बीज की एक किलो की थैली कपास की हमको 300 रुपए में मिलती थी, आज वो 1200 और 1600 रुपए में मिलती है। तो खाद का की कीमत बढ़ गई है, बीज की कीमत बढ़ गई है और मजदूरों की भी कीमत बढ़ गई है। इस रेशो में MSP नहीं बढ़ रही है, इसलिए न्यूनतम मूल्य जो शासन निर्धारित करती है वो खर्चे के आधार पे, किसान को अपने उत्पादन को कितना उत्पादन निकालने के लिए खर्चा आता है उस आधार पे MSP होना चाहिए।
भकड़ी जी, हम जानना चाहते हैं कि कम से कम कपास के लिए क्या समर्थन मूल्य होना चाहिए वर्तमान समय में?
आज कपास के लिए कम से कम कम से कम 8 से 10 हजार रुपया, कम से कम 8 हजार रुपया तो समर्थन मूल्य होना ही चाहिए।
भकने जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह कपास तो भाव नहीं मिल रहा, उसी तरह हमारा छिंदवाड़ा जिला सब्जियों के लिए भी जाना जाता है, आज सब्जियों को भी भाव नहीं है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे?
शासन ने ये निर्धारित करना चाहिए, एक रेट निर्धारित करना चाहिए, जिस तरह से उद्योग फैक्ट्रियों में उनके उत्पादन का रेट फिक्स होता है। आप साबुन लेने जाएंगे तो उसका दाम निर्धारित करता है फैक्ट्री का मालिक। आप एक टूथ ब्रश लेने जाएंगे, टूथपेस्ट लेने जाएंगे बाजार में, तो उसका दाम, उसका मूल्य निर्धारित करता है उसका मालिक। उसी तरह की तरीके से किसानों को भी अपने फसलों के दाम का निर्धारण करने का एक अधिकार सरकार ने देना चाहिए। शासन ने इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि कोई भी उत्पादन हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फसलें हो, धान्य हो, अनाज हो, चाहे सब्जियां हो, यदि आलू की कीमत, आलू हमारे हमारे भारत देश में कम से कम 2 फसलें तो होती है, 2 फसलों को निकलने का जो समय होता है, उस समय में सरकार ने एक रेट निर्धारित, मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए कि आलू इस रेट में ही बिकेगा, इससे कम रेट पे कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा, जो खरीदने के लिए मजबूर करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक शासन का, सरकार का जब तक नियंत्रण और ये निर्धारण नहीं आता किसानों के प्रति, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता, किसानों को अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल सकता।
भकड़ी जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी वर्ष 2022 की विदाई है और वर्ष 2023 अभी आने वाला है, तो आप वर्ष 2023 किस तरह का देखना चाहते हैं संसद क्षेत्र के लिए, मध्यप्रदेश के लिए?
मैं जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश की और संसद की बात करिए, मैं एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हूँ, इसलिए मेरी एक पीड़ा भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार हो, उन्होंने जिस तरीके से बेरोजगारों से, किसानों से जो वादे किए थे, जो आम व्यक्ति से जो वादे किए थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल के दाम हम कम कर देंगे, बिजली के बिलों में हम लोग दाम में कम कर देंगे, तो इस तरीके के जो वादे किए थे वो वादे शासन ने पूरे नहीं किए। जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहा था कि हम इतने करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, ये जो 2014 से जो घटनाक्रम चला है वो महंगाई कम कर देंगे, ये भी वादा सरकार का था, पर महंगाई आप देखते हैं, खाने का तेल जो 80 रुपए लीटर का मिलता था वो आज हमको 160 और 170 रुपए लीटर का मिल रहा है, 80 रुपए 90 रुपए लीटर का हमको पेट्रोल मिलता था वो आज 125 रुपए लीटर, 110 और 115 रुपए लीटर का मिल रहा है। रसोई गैस जो 4 साल 10 साल पहले, 5 साल पहले 450 रुपए में मिलता था, वो आज हमको 1100 रुपए में मिल रहा है। तो महंगाई के बोझ तले आम व्यक्ति दब गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, ताकि गरीब और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गांव में लोग बसते हैं, उनके हितों की नीतियां बने। आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी थी, तो एक रोजगार गारंटी, एक अन्न गारंटी, ताकि हर व्यक्ति को भोजन मिले, इसकी गारंटी का कानून बनाया गया था। हर व्यक्ति को कम से कम 90 दिन गांव में ही रोजगार मिले, इसका कानून माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाया था। आपने देखा होगा कमलनाथ जी की सरकार बनी, सरकार बनने के पहले वायदा किया था कि 2 लाख रुपए तक का हम लोग किसानों का कर्जा माफ करेंगे। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने, कई आपको उदाहरण मैं बता सकता हूँ कि कमलनाथ जी के सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने की प्रक्रिया निरंतर चालू रखी थी, पर 15 महीने में सरकार चली गई, इसलिए वो जिन लोगों का कर्जा माफ नहीं हो सका उन लोगों का नहीं कर पाए। आपने ये भी देखा होगा कि कई सालों से उनको 300 रुपया वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 300 रुपया मिलता था, उनको हमने दुगना किया, 600 रुपया पेंशन किया। आपने देखा होगा पूरे 15 महीनों में जो हजार 1500-1500 रुपये आम उपभोक्ता को बिजली का बिल आता था, वो 90 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये का बिजली का बिल पूरे 15 महीने में आया, 100 रुपये से ज्यादा का बिजली का बिल आम उपभोक्ता को नहीं आया था।
भकने जी, जैसे कि अभी आप जो बोल रहे, तो हम आपसे जानना चाहते कि वर्तमान में विपक्ष की भूमिका आपकी पार्टी कांग्रेस निभा रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि यदि हम संसद क्षेत्र की बात करें तो यहाँ स्थानीय संसाधनों की लूट मची हुई है, महंगाई है, ये सारी चीजें, तो इस पर विपक्ष के रूप में आप आने वाले समय में क्या कदम उठाने जा रहे हैं?
हम लोग समय समय पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, एक विपक्ष की भूमिका में ये होता है कि विपक्ष के भी दायरा है, शासन में जो लोग हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, पर विरोध करने का भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। ये जो विगत 2 सालों में कोरोना का डर हुआ उसके कारण भीड़ भाड़ और धरना प्रदर्शन पे पूरी तरीके से बैन था, और आपने शासन की मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां है, आप पूरे मध्य प्रदेश सरकार को भी देख रहे होंगे किस तरह से पहले 15-15 दिन एक एक महीने तक सत्र चलता था विधानसभा में, आज 4 दिन और 2 दिन से ज्यादा का विधानसभा का सत्र नहीं चलता। जब विधानसभा में ही यह हाल है तो हमारे संसद में क्या हाल होगा? हम लोग यदि धरना प्रदर्शन करने जाए तो हमारे ऊपर झूठे प्रकरण लगाए जाते हैं। हम यदि शांतिपूर्ण में भी धरना करें तो भी हमारे को प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस के प्रकरण बनाए जाते हैं और उल्टे सीधे हमारे पे कार्रवाई की जाती है। फिर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई से या जेल जाने से नहीं डरते, पर हम लोगों ने समय समय पे शासन की गलत नीतियों का विरोध किया है और जो अच्छी नीति है उसका हमने स्वागत भी किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद भकनी जी कि आपने वर्ष 2022 की विदाई के अवसर पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर रूबरू होकर किसानों के प्रति अपना दर्द और किसानों की समस्याओं पर अपनी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद दिनकर जी।